الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں، معارف القرآن کی جلد نمبر 3 میں سے، اور ابھی جو آیت تلاوت کی گئی یہ 122 آیت ہے سورہ انعام کی، 122nd. پیچھے کی جو آیات تھیں وہ ہم نے کافی دنوں تک پڑھ کر کے الحمدللہ ان کا معاملہ مکمل کیا. جمعے کے درس کے اندر آخری آخری اس کی جو ہے وہ تفسیر ہم نے پڑھ لی تھی، اگرچہ کہ معروف و مسائل کے چند ایک ہی لائن ہے وہ ہماری ابھی رہ گئی تھی. تو ان میں بہت ہی اہم بات جو پیچھے کی آیات میں تھی، یعنی 118 سے لے کر کے 121 تک میں، کہ جو دین اسلام کے اصولیات ہوتے ہیں، یعنی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ عقلی دلائل کے ذریعے سے پروف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ جو فروعات ہوتی ہیں، یعنی تفصیلات جو ہوتی ہیں کہ فلانا کام کرنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ انگریزی کا جو لفظ ہاؤ، ٹھیک ہے، HOW، تو ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ، ہاؤ ٹو ڈو وضو، ہاؤ ٹو ڈو نماز، ہاؤ ٹو ڈو زکوٰۃ، ٹھیک ہے. تو یہ جو تفصیلات ہوتی ہیں نا، تو ان کے لیے عقلی دلیلیں درکار بھی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ عقلی دلیلیں کہ بھئی یہ کیوں جو ہے وہ ہاتھ دھونے کو کا حکم دیا گیا، کیوں جو ہے وہ پیر دھونے کا حکم دیا گیا، کیوں جو ہے وہ کھڑے رہ کر کے 3 آیات تک تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا، رائٹ، کیوں جو ہے وہ 2 سجدے کرنے کا حکم دیا گیا، 3 سجدے کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، رکوع صرف ایک کیوں کہا گیا، رکوع جو ہے وہ 2 دفعہ کرنے کو کیوں نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ فروعات ہوتی ہیں، ان کو تفصیلات بھی کہا جا سکتا ہے. تو ان فروعات کے لیے عقلی دلائل نہیں کہ کیوں 2، کیوں 3 نہیں، کیوں 5 نہیں، ٹھیک ہے. جبکہ اصولیات جو ہوتی ہیں تو ان کے لیے عقلی دلائل، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ وہ درکار ہوتے ہیں. تو وہ عقلی دلائل کیا ہوتے ہیں اصولیات کے لیے؟ وہ بھی کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ کمپلیکس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی بہت کمپلیکس سوفسٹیکیٹڈ قسم کے عقلی دلائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ عقلی دلائل بہت ہی سمپل سے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ بھائی جب تم نے رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانا ہے تو تم رسول اللہ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو اللہ کی بتائی ہوئی باتیں مانو، جب تم نے اللہ کو خالق کائنات مانا ہے تو تم اللہ کی حکمت کو اپنی حکمت پر ترجیح دو، ٹھیک ہے نا بھائی. جب تم نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امین مانا ہے تو تم ان کی باتوں کو بھی سچا مانو، ہے نا بھائی، یہ عقلی دلیل ہے، ٹھیک ہے. تو بس اتنی عقلی دلیل ہے ہر انسان کے لیے کافی ہیں. یہ عقلی دلیلیں سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کوئی بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رائٹ. یہ والی عقلی دلیلیں یہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ایک عام عورت بھی سمجھ سکتی ہے، رائٹ، عام مرد بھی سمجھ سکتا ہے یہ والی عقلی دلیلیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ جتنی یہاں پہ موجود ہیں کیا یہ عقلی دلیل آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا مشکل ہے اس کے اندر نا، ٹھیک ہے. اللہ کا حکم کیوں ماننا ہے، कि भाई जब अल्लाह हर चीज का खालिक और मालिक और कादिर है, और अल्लाह ताला ने मानने पर सवाब और ना मानने पर अजाब का वादा किया है, बल्कि ऐलान किया है, तो मैं अल्लाह ताला की बात को मानूंगा तो मुझे फायदा होगा, ठीक है, और अगर मैं नहीं मानूंगा तो मुझे नुकसान होगा। ये अकली दलील है, ठीक है ना। जब अल्लाह ताला की बात को मैंने सच्चा माना, तो जब अल्लाह ने वादे किए तो उन वादों को सच्चा मानना भी तो बात को सच्चा मानने में दाखिल है, ठीक है। अच्छा, एक और अकली दलील कि अल्लाह ताला जो कुछ हमारे पास है ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, राइट, ये सब का सब अल्लाह का दिया हुआ है, तो जिसका खाते हो तो उसके गुण क्यों नहीं गाते हो, राइट, जिसका खाते हो तो उसकी बात क्यों नहीं मानते हो, जिसके तुम पर एहसानात हैं तो उसके एहसान मानना और उसकी इज्जत करना, क्या ये अकल के मुताबिक नहीं है ये बात, ठीक है, क्या ये अकल के मुताबिक नहीं है ये बात, क्या ये खिलाफ अकल बात है कि भाई जिसके एहसानात हैं तो उसके एहसान मंद रहो ना, ये क्या बेअकली की बात है या ये अकल की बात है, ठीक है। तो ये है दीन इस्लाम की लॉजिक, ठीक है, दिस इज हाउ दीन इस्लाम इज कंप्लीटली लॉजिकल, ठीक है। तो अब हर इंसान के लिए ये लॉजिक काफी है, और यही लॉजिक जो है जिसने इसकी इसको तस्लीम कर लिया, एक होता है ना लॉजिक आपको समझ में तो आ गई लेकिन आपने इसको तस्लीम नहीं किया, तो जिसने तस्लीम नहीं किया वो काफिर, और जिसने तस्लीम भी कर लिया इकरार भी कर लिया तो वो ईमान वाला कहलाता है, ठीक है। और जो इस लॉजिक को फिर याद भी रखता है और इस लॉजिक को फिर हर चीज पे अप्लाई भी करता है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती, उसके लिए कोई गुमराही नहीं होती, कोई उसको गुमराह नहीं कर सकता। और जो इस लॉजिक को भूल जाता है तो फिर उसको हर चीज गुमराह करनी शुरू हो जाती है, हर छोटी बड़ी चीज उसको गुमराह कर देती है जो इस लॉजिक को भूल जाता है, ठीक है। तो इस लॉजिक को समझने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बगैर किताबें पढ़े हुए लोग इस लॉजिक को समझ सकते हैं, ठीक है ना भाई, कि जिसका खाते हो उसके गुण गाओ और जिसका नहीं खाते हो उसके क्यों गुण गा रहे हो, राइट, जिसका तुमने नहीं खाया है यानी का तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं है तुम उसके क्यों गुनगाते हो, ये वाली लॉजिक समझने के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि इसके बरक्स मामला क्या है कि बड़ी बड़ी किताबें तो पढ़ी हुई हैं लेकिन इस लॉजिक को भूल गया या इस लॉजिक का इनकार कर दिया, तो ऐसे शख्स के साथ क्या होता है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हो लेकिन इस बिल्कुल सीधी सादी सी सिंपल लॉजिक का इनकार कर दे, ठीक है, या इसको भूल जाए, इस लॉजिक को इनकार ना भी करे लेकिन भूल जाए इस लॉजिक को, तो ऐसे शख्स के साथ क्या होता है, ऐसा शख्स जो है वो गुमराह हो जाता है, ठीक है, ऐसा शख्स जो है वो गुमराह हो जाता है, ठीक है। जैसे माजी के अंदर भी बहुत बड़े बड़े किताबें पढ़े हुए लोग थे जिन्होंने यूनानी फलसफे की भी किताबें पढ़नी शुरू कर दी, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी फिर यूनानी फलसफे की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन ये जो सिंपल लॉजिक थी ना इस लॉजिक को वो भूल गए, जब वो इस लॉजिक को भूल गए तो वो गुमराह हो गए, उन्होंने अजीब अजीब फिरके बना लिए, कुछ ने तो इनकार ही कर दिया कि ये दीन इस्लाम तो है ही गलत, वो तो बिल्कुल खुले काफिर हो गए, लेकिन बाकी ऐसे भी थे कि जिन्होंने फिरके बना लिए अपने, किसी ने मोतजिला के नाम का फिरका बनाया, किसी ने जो है वो जहमिया के नाम का फिरका बनाया, किसी ने जो है वो कदरिया के नाम का फिरका बनाया, हालांकि कितने पढ़े लिखे लोग थे, वो बड़े पढ़े लिखे लोग थे लेकिन इस बुनियादी लॉजिक को भूल गए, बस गुमराह हो गए। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने ना इन आयात में आखिर में क्या फरमाया था, ये एक बड़ा अहम नुक्ता था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक सिलसिला शुरू हुआ है पिछले कई हफ्तों से, हम ये कर रहे हैं। फिर जुमे का बयान होता है तो उसके बाद फिर हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चाय नाश्ता थोड़ा बहुत होता है, फिर उसके बाद जो है ना वो तकरार होती है। तो बयान के दौरान एक तो बड़े लोग होते हैं बड़ी उम्र के, वो नोट्स लिखते हैं ना, तो उन नोट्स की हम तकरार करते हैं। लेकिन हमने चंद हफ्तों से ये भी शुरू किया है कि जो हमारे नौजवान बच्चे होते हैं ना, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16, 17, 18 से लेकर 19, 20 तक, तो 12 से लेके 20 साल तक के बच्चे होते हैं, तो हमने उनकी भी जिम्मेदारी लगा दी है कि जी आप भी नोट्स लिखेंगे बयान के दौरान। और मुझे तवक्को नहीं थी कि वो लिख पाएंगे, क्योंकि बयान में बहुत तेजी होती है ना, बहुत सारी बातें हो रही होती हैं बयान के अंदर। आपको अंदाजा होगा, अगर आप क्लासेस लेती हैं तो आपको अंदाजा होगा कि एक ही क्लास में कितनी मुख्तलिफ बातें हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने लिखना शुरू किया और उनके लिखने का हमें हैरानगी होती है कि उन्होंने कैसे कैसे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, और बिल्कुल सही सही लिखते हैं और फिर सही सही बयान भी करते हैं। तो फिर हम बच्चों के साथ भी बैठते हैं, वो सारे फिर अपने नोटबुक्स लेकर, नोटबुक्स जो है वो सामने रखते हैं और अपने जो पॉइंट्स लिखे होते हैं ना वो पढ़ के सुनाते हैं कि हमने ये पॉइंट लिखा। बल्कि ये भी कहते हैं कि मुझे इस पूरे बयान में ये वाला पॉइंट सबसे अहम लगा, 12 साल का बच्चा, राइट, 14 साल का लड़का, जिनके समझते हैं खेलने की उम्र है, या जिनको जो है ना वो स्कूलों के अंदर जो है वो ग्रेड्स के प्रेशर के अंदर जो है वो खाली पड़ते हैं। यहाँ पे कौन सा ग्रेड्स का प्रेशर होता है, कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे नोट्स लिख करके फिर बताते हैं कि भाई ये पॉइंट लिखा, ये मुझे सबसे अहम लगा, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी, ये मुझे सबसे यूनिक बात लगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर तकरीबन 25-30 बच्चे जो होते हैं वो अपने अपने नोट्स में से अपने अपने पॉइंट्स पढ़कर, हालांकि हमें रोकना पड़ता है कि बस करें, बस दूसरे दूसरे को चांस दें, वरना तो एक ने कई कई पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब तकरार हो रही थी पिछले हफ्ते, पिछले इसी जुम्मे को, तो उसमें जब इसने ये कहा, वह इन अतअतुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून के तहत, में ये बात मुझे बड़ी अहम लगी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने उन काफिरों की अताअत करी तो तुम लोग मुशरिक हो जाओगे, तो तुम लोग मुशरिक हो जाओगे। ठीक है, बयान में भी आपने सुना होगा कि साजिश ने भी कहा था कि ये कौन फतवा दे रहा है, कुफर का फतवा कौन दे रहा है इस आयत के अंदर, कोई दारुल इफ्ता आयत कुफर का फतवा नहीं दे रहा, कोई मुफ्ती साहब, कोई शेख साहब, कोई पीर साहब, कोई मौलवी साहब कुफर का फतवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुफर का, शिर्क का फतवा दे रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना। ठीक है, इवन इन छोटे बच्चों ने उसको नोट किया और उसको लिख करके भी सुनाया। और फिर उसके ऊपर एक और नुक्ता अल्लाह ताला ने दिल में डाला कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अगर तुमने उनकी अतात करी तो ये तुम्हारा अमल शिर्क है, ये तुम्हारा अमल शिर्क है, ये नहीं कहा कि व इन अतअतुमुहुम फइन्नहु शिर्कुन या फिन फइन्नहु लशिर्कुन, कि ये शिर्क, ये अमल शिर्क यानी शिर्किया अमल है, ये नहीं कहा, बल्कि ये फरमाया कि तुम मुशरिक हो गए, तुम मुशरिक हो गए। इन दोनों बातों में फर्क है। मिसाल के तौर पर आप बहुत से ऐसे मुसलमानों को जानती होंगी कि जो कि कब्रों पे जाकर के जो है ना वो मजारों में जाके सजदे करते हैं, ठीक है, या मजार पे जाकर के जो है वो जो कब्र में मौजूद हैं तो उनसे जो है वो अपनी हाजत रवाई की दुआएं मांगते हैं। ठीक है, तो इसको फिर बहुत से उलमा जो है वो, यानी सजदा करने को तो शिरकिया अमल कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि अब ये शख्स जो है वो मुशरिक हो गया है, ये नहीं कहते, ये फतवा नहीं है कि अब वो जो गया ना, अब वो मुसलमान नहीं रहा, अब वो मुशरिक हो गया, वो काफिर हो गया, नहीं, बल्कि उसका अमल जो है वो शिरकिया हुआ। ठीक है, तो अमल के शिरकिया होना ये कम दर्जे की चीज है, उससे बंदा पूरा का पूरा मुशरिक नहीं हो जाता, राइट। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुमने उनकी अताअत करी और हलाल को हराम, उनके कहने की वजह से हलाल को हराम बना दिया या हराम को हलाल बना दिया, अब तुम मुशरिक हो गए हो, अब तुम मुशरिक हो गए हो। ठीक है, तो अब हम सोचें कि जब हमने अपनी औलादों की ईमानी तरबियत नहीं करी होती है और वो गैरों की किताबें पढ़ते हैं, गैरों के माहौल में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं और वो उनकी अताअत करना शुरू कर देते हैं, हलाल हराम के मामले में उनकी अताअत करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी औलादें तो फिर मुशरिक हो जाती हैं ना फिर, राइट? कौन कह रहा है? अल्लाह का कुरान कह रहा है कि वो मुशरिक हो जाती हैं फिर। तो हमें कितना ज्यादा इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि भाई हम उनका ईमान पहले बनाएं, फिर वो कोई और चीज पढ़े। तो ईमान बनाने वाली उम्र थी, उसके बारे में बड़ी तफसील से बात हो चुकी है। भाई उस उम्र में ईमान बनाना होता है, और अब तक अगर नहीं बनाया तो अपनी गलती को तस्लीम करें अपनी औलाद के सामने कि बच्चा मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हारी उस उम्र में अब तुम्हारा ईमान नहीं बनाया, मुझसे गलती हुई है। अब मैं तुम्हें बता रही हूं, अब मैंने तौबा करी है अपनी गलती से और मैं अब तुम्हें बता रही हूं कि नहीं, जो कुरान में है, जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है वही सच है, और उसके खिलाफ जो भी बात है वो सच नहीं है, उसके खिलाफ जो भी बात है वो सच नहीं है। अगर उसको हम पढ़ भी रहे हैं, या तुमको हम स्कूल भेज करके या तुमको हम प्राइवेट ट्यूटरिंग के जरिए से वो किताबें पढ़ा भी रहे हैं ना, तो उसको तुम सच नहीं समझ लेना, हरगिज हरगिज उसको सच नहीं समझ लेना। सच तो सिर्फ कुरान है, सच तो सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की बात है। ठीक है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम जो है ना वो अपनी गलती का एहसास करके अल्लाह ताला से माफी मांग के और अपनी गलती का इकरार भी कर सकते हैं, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इससे अल्लाह ताला इज्जत बढ़ा देते हैं, बल्कि अब इज्जत अल्लाह ताला डालेंगे औलाद के अंदर। पहले इज्जत नहीं थी क्योंकि हमने अल्लाह की नाफरमानी करी थी, तो अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत हमारी औलादों की आंखों से निकाल ली थी। अब जब हम अल्लाह ताला से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी इज्जत को उनकी निगाहों में पैदा फरमाएंगे। ये एतमाद है हमारा अल्लाह ताला के ऊपर कि नहीं है, राइट? तो इस एतमाद खुद खुद पैदा करेंगे, तब फिर औलाद के अंदर एतमाद पैदा होगा ना। पहले तो अल्लाह पे एतमाद करना है कि भाई अल्लाह ताला इज्जत देने वाले हैं, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जुल्लु मन तशा, जिसको चाहते हैं वो इज्जत देते हैं, तो हम उसको इज्जत देंगे तो वो हमें इज्जत देंगे, और अगर हम उसको इज्जत नहीं देंगे तो फिर क्यों हमें इज्जत देंगे? ठीक, तो फिर इसके मारूफ मसाइल में बस इतना सा लिखा था मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने कि मा दो के रसमुल्लाह में ज़बह इख्तियारी और ज़बह इज़तिरारी, यानी तीर व बाज और कुत्ते का शिकार, जबकि इसके छोड़ने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ही जाए। तो ज़बह इख्तियारी हो या ज़बह इज़तिरारी हो, यानी एक तो आपने अपने इख्तियार से ज़बह किया ना, ठीक है, या जो है वो ज़बह इज़तिरारी के अंदर तीर मार करके उसको पहले जख्मी किया और फिर उसको ज़बह किया, या बाज छोड़ करके, जो बाज वो शिकरा या शिकरा होता है, फाल्कन या और क्या कहते हैं उसको, उस तरह का वो जो परिंदा, शिकारी परिंदा होता है, उसको छोड़ करके वो पकड़ करके लाया और फिर आपने उसको ज़बह कर लिया, या कुत्ते को छोड़ा, तो कुत्ता भी जो है वो जो वो ट्रेन कुत्ता होता है ना, तो वो फिर अपने दांत गाड़ नहीं देता उसके अंदर, ठीक है, तो वो आपने छोड़ा बिस्मिल्लाह पढ़ कर कुत्ते को छोड़ते हैं, वो कुत्ता जा करके बस उसको पकड़ के लेकर के आ जाता है, ठीक है, अपने मुंह से पकड़ करके लेकर के आता है, ठीक है, तो उसका जहर भी जो है ना वो उस जानवर के अंदर नहीं जाता, फिर आप उसको जबा कर लेते हैं उस जानवर को जिसको कुत्ता पकड़ करके लेकर के आया है। तो ये दोनों तरीके जो हैं वो जायज तरीके हैं शरीयत के अंदर, इनको बाकायदा कुरान मजीद ने भी इसका जिक्र किया है, सूरह मायदा के शुरू के आयात में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़ा गया, अल्लाह का नाम पढ़ा गया, और जिक्र हकीकी व जिक्र हुक्मी सब इसमें दाखिल है, यानी जुबान से पढ़ा गया या जो है वो दिल में अल्लाह का नाम है वो सब दाखिल है। बस इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक जिस पर बिस्मिल्लाह सहवन तर्क कर दी जाए, यानी भूल के बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सका, भूल गया, वो हुक्मन मा ज़ुकर इस्मुल्लाह अलैहि में दाखिल है। ठीक है, तो मुसलमान है यानी उसके दिल में है ये बात कि भाई ज़ुबह करते हुए जो है ना वो अल्लाह का नाम पढ़ना है मुझे, लेकिन भूल गया, तो दिल में तो है ना उसके ये वाली बात, तो उसने जानबूझकर तर्क नहीं किया, जिसको आगे लिखा आमदन तर्क, जानबूझकर तर्क। अगर जानबूझ करके तर्क करता कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ये वाला जानवर जो ज़बह कर रहा हूं मैं अल्लाह के नाम पर ज़बह नहीं कर रहा, ये उसके दिल के अंदर नियत है, तो वो हराम है। ठीक है, लेकिन अगर उसने ऐसी नियत नहीं करी, एक्सप्लिसिट नियत नहीं करी तर्क करने की, तो बस उसके दिल के अंदर अल्लाह का नाम है और उसको पता भी था कि ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लिया जाना चाहिए, लेकिन भूल गया, तो उससे जो है ना फिर जानवर हराम नहीं होगा बल्कि हलाल ही रहेगा। ठीक है, तो जिक्र हकीकी यानी जुबान से अदा कर देना, और जिक्र हुक्मी के भूले से अदा नहीं किया, तो इनके दोनों के जरिए दोनों तरीकों से जानवर हलाल होता है। आगे फरमाते हैं कि अब अमन का नमीतन फअहयैनाहु, ये जो अभी तलावत की गई थी तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो जो के मुर्दा है, तो आ जो है ये हमजा इस्तिफ़हामिया कहलाता है, यानी सवाल के लिए जो हमजा इस्तेमाल होता है ना, ये अलिफ जो है ना ये असल में सिर्फ हमजा का समझे, ये हमजा की सीट होता है, हमजा की बैठने की जगह होती है। ठीक है, कभी जो है ना वो सिर्फ हमजा भी लिख देते हैं, लेकिन कभी अलिफ लिख करके उसके ऊपर हमजा लिखते हैं, और कभी सिर्फ अलिफ लिख देते हैं, लेकिन असल में ये अलिफ नहीं होता, असल में ये हमजा होता है। ठीक है, तो ये हमजा इस्तिफहामिया कहलाता है अरबी ग्रामर में, और उसका मतलब होता है क्या, व्हाट। वाओ जो है वो वाओ जायदा होगा क्योंकि इसका यहाँ पे तर्जुमे में कोई यानी इसका मफहूम में कोई अमल नहीं है। ठीक है, तो ये अरबी जुबान की फसाहत बलागत और खूबसूरती के लिए इस तरीके से बात की जाती है। ठीक है, जैसे अंग्रेजी में और उर्दू में हम वाव से जुमला शुरू नहीं करते। ठीक है, जैसे आप एंड थैंक यू, तो भाई अगर हम किसी को थैंक यू करना चाहते हो तो हम सिर्फ कहते हैं थैंक यू, ये तो नहीं कहते एंड थैंक यू। ठीक है, लेकिन अरबी में वफदलन, ठीक है, तो वो शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं लेकिन शुरू में वाव भी लगा रहे हैं, हालांकि शुक्रिया अदा करने के लिए वाव की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अरबी जुबान का मुहावरा। ठीक है, तो इसको फिर वाव जायदा कहा जाता है, तो इसका कोई तर्जुमा नहीं है, बस आ का मतलब क्या, मन का मतलब कौन या जो, काना है मैतन, मैतन का मतलब मुर्दा। ठीक है, अब ये मैतन का लफ्ज अल्लाह ताला ने सूरह मायदा, इसी अगर आपके पास ये जिल्द नंबर 3 है तो जिल्द नंबर 3 में पहली सूरत जो थी वो सूरह मायदा है, जो कि मर्दों की क्लास में शाम के वक्त चल रही होती है, तो उसके अंदर आयत नंबर 3 है जिसमें इसका निशान लगा लेना चाहिए था, वो मिल नहीं रही। वाह, वालेकुम मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, ये वाली आयत जो है आयत नंबर 3 ही है, कि वहां पर भी ये मैता का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी जो जानवर खुद से मर जाए, ठीक है, इसको यानी तुमने जबह ना किया हो बल्कि वो खुद से मर जाए। ठीक है, तो वही लफ्ज अल्लाह ताला यहां पर भी इस्तेमाल फरमा रहे हैं, अवमन का ना मैतन। ठीक है, यानी जो कि ना अपने गलती की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से वो रूहानी मौत मर गया। ठीक है, यहां पर रूहानी मौत का जिक्र है, जबकि वहां पर जानवरों का जिक्र था, तो वहां पर जानवर की जिस्मानी मौत का जिक्र था, यहां पर इंसान का जिक्र है, ठीक है। तो अवमन का नमैतन, भला एक शख्स जो के मुर्दा था, ठीक है, फअहयी नाहू, बस हमने उसको जिंदा किया, फिर हमने उसको जिंदगी दे दी, वह जालना लहू नूरन, और बना दिया उसके लिए एक नूर, एक रोशनी, यमशी भी ही, वो चलता है उस रोशनी के साथ, जैसे गोया के जैसे किसी को आपने टॉर्च पकड़ा दियो, अब वो टॉर्च के साथ जो है वो चल रहा है, या टॉर्च की रोशनी में चल रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर अल्लाह ताला कोई मादी रोशनी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नूर की बात कर रहे हैं ना, यमशी बिही फिन्नासी, वो इंसानों के दरमियान उस नूर के साथ चलता है, गोया के जिंदगी गुजारता है, चलने से मुराद यहां पर क्या, जिंदगी गुजारता है। कमन, क्या उस जैसा, मसलुहू फिल जुलुमाती, क्या उसकी मिसाल उस जैसी है जो कि जुलुमात में है, अंधेरों में है, लैसा बिखारिज मिन्हा, वो नहीं निकल पाता है उसके अंदर से, इसके अंदर से अंधेरों में से, हाँ की जो जमीर है ये जुलुमात की तरफ पॉइंट कर रही है, तो नहीं निकल पाता है मिन्हा उनमें, उसमें से, किसमें से, जुलुमात में से, जुलुम कहते हैं, जुल्म अंधेरे को कहते हैं, गुनाह ये भी एक अंधेरा है, और जो फिजिकल अंधेरा होता है उसके लिए भी जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो लैसा बिखारिज मिन्हा, ये उसके लिए ना उसमें से कोई निकलने का तरीका नहीं पता, उसको निकल नहीं पा रहा उसके अंदर से। तो अल्लाह ताला ने मैतन के लिए तो ये नहीं कहा कि जिसको हमने मार दिया, क्योंकि ये एक मनफी चीज है, अल्लाह ताला मनफी चीजों को अपनी तरफ अमूमन नहीं मंसूब करते हैं। तो जो अपने गुनाहों की वजह से मर गया था ना, फिर जिंदगी किस, जिंदगी खुद से नहीं उसको मिल गई, जिंदगी हमने दी उसको, फअहयी नाहू, बस हमने उसको जिंदगी दी, और फिर हमने उसके लिए जो है ना एक नूर बना दिया, वो इंसानों के दरमियान उस नूर के साथ जिंदगी गुजारता है, क्या उस, क्या वो उस जैसा हो सकता है जो कि अंधेरों में रहता है, निकलने का उसको रास्ता नहीं मिलता, कदालिक ऐसे ही, कजालिक ऐसे ही, जुयना लिल काफिरीना, मुजयन कर दिए गए मुनकर लोगों के लिए, इनकार करने वालों के लिए, जिन्होंने नबी की सच्चाई का इनकार कर दिया, उनके लिए मुजयन कर दिए गए, मा कानू यामलून, वो जो अमल करते हैं, जो वो अमाल करते हैं ना, वो उनके लिए मुजयन, वो बड़ा अच्छा समझ करके कर रहे होते हैं उनको, ठीक है। तो ये मुजयन कर दिए गए, ये शैतान का अमल है, जो कि अल्लाह ताला दूसरी जगहों पर भी हमें बताते हैं कि शैतान ने उनके अमाल को मुजयन कर दिया। ये तो तर्जुमा हो गया, फिर खुलासे तफसीर जो कि थानवी रहमतुल्लाह के बयान कुरान से नकल फरमाते हैं, उसमें फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा यानी गुमराह था, राह से, राह को गुम कर चुका था, कैसे गुम कर चुका था, उसको किसी ने इशारे दिए, ये अपनी मर्जी से उन इशारों के पीछे चलना शुरू हो गया, और सिरात मुस्तकीम को उसने छोड़ दिया, किसने किसने इशारे दिए, जो के जो बगैर इल्म के लोग थे, अटकलों को फॉलो करने वाले, अपनी अजम्पशंस को फॉलो करने वाले, ऐसे लोगों ने इशारे दिए कि हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, और ये उनकी तरफ चल पड़ा, तो इसने सीधे रास्ते को छोड़ दिया, ये हो गया गुमराह। तो ऐसा शख्स जो कि पहले मुर्दा यानी गुमराह था, फिर हमने उसको जिंदा यानी मुसलमान बना दिया, और हमने उसको एक ऐसा नूर यानी ईमान दे दिया कि वो उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। तो ईमान जो है ना वो ऐसा नूर होता है कि जिसके जरिए से फिर वो अपनी जिंदगी गुजारता है, ठीक है। तो नूर होता है ना वो, तो नूर क्या चीज होती है, नूर रोशनी को कहते हैं, तो चाहे वो जिस्मानी रोशनी हो, मादी रोशनी हो, तो वो चीज होती है ना जिसमें आपको चीजें समझ में आ रही होती हैं, नजर आ रही होती हैं, ठीक है। उसी तरीके से रूहानी रोशनी, तो वो भी तो फिर इसी सिफत की हामिल होनी चाहिए ना, कि जिसके अंदर आपको अपना नफा और नुकसान नजर आ रहा हो, राइट? तो अगर ईमान रूहानी रोशनी है तो फिर उसके अंदर तो नफा और नुकसान नजर आना चाहिए ना। लेकिन कोई अपने आप को ईमान वाला तो समझता है, लेकिन उसको नफा और नुकसान नजर ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा? कि उसके पास रोशनी नहीं है। अगर होती तो नजर आ रहा होता ना, तो क्यों नहीं नजर आ रहा फिर भाई? रोशनी ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ईमान नहीं है, ठीक है? ईमान नहीं है। या हल्का हाथ रखें अगर, तो इतना कहेंगे कि रोशनी है लेकिन बहुत मद्हम है, राइट? जैसे वो जीरो पावर का बल्ब होता है ना, तो उससे रोशनी तो होती है लेकिन कितना नजर आ रहा होता है? बहुत कम नजर आ रहा होता है, और अंधेरा ही अंधेरा होता है, ठीक है? तो वो इस किस्म के बल्ब से तो फिर नफा नुकसान नहीं समझ में आ रहा होता ना। या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत ही मद्धम रोशनी है। तो फरमाया कि हमने उसको ऐसा नूर यानी ईमान दे दिया कि वो उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है, यानी हर वक्त वो उसके साथ रहता है। ऐसा नहीं होता कि बस जो है वो कभी जो है वो उठा लिया और कभी वापस रख दिया, कभी उठा लिया कभी वापस रख दिया, यानी कभी रोशनी में चल रहा है कभी अंधेरे में चल रहा है, कभी रोशनी में चल रहा है कभी अंधेरे में चल रहा है। नहीं, यमशी भी ही फिन्नास, वो उसके साथ रहती है, वो उसको छोड़ती नहीं है, ठीक है? तो हर वक्त वो उसके साथ रहता है, जिससे वो सब मुसीबतों से मिसल गुमराही वगैरह महफूज और मामून और बेफिक्र फिरता है। तो कभी अगर होता है ना कि भाई आप रोशनी में तो चल रहे हैं, आपको सारी चीजें नजर तो आ रही हैं, अब इसके ऊपर कोई अगर ये कहे कि भाई अगर कोई ईमान वाला है तो क्या उससे कभी गुनाह नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है जब उसके पास रोशनी है, जब उसको चीजें नजर आ रही हैं, तो फिर उससे गुनाह कैसे हो सकता है? तो भाई इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपके पास रोशनी है, आप एक तरफ देख रहे हैं, आपको वो चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन आपकी निगाह जो है ना वो जरा नीचे से हट गई, तो चलते चलते सामने कोई पत्थर आ गया था, तो उस पत्थर से आपका जो है ना वो पैर टकराया और आप लड़खड़ा गए या आप गिर पड़े, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है ना कि भाई आप नजर तो आ रहा था, आपको देख तो रहे थे, लेकिन फिर भी जरा सा आपका ध्यान हटा, उधर आपको टक्कर लगी, आप गिर गए। हालांकि रोशनी है आपके पास, तो अब क्या होगा? आप उठ खड़े होंगे, ठीक है ना? गिर पड़े हैं लेकिन उठ खड़े होंगे, और आइंदा उससे फिर आप बचेंगे, आइंदा जो है वो मोहतात हो जाएंगे, थोड़ा सा और विजिलेंट हो जाएंगे अपनी निगाहों को इस्तेमाल करने में। यही मामला ईमान वाले का होता है कि गुनाह कभी उससे हो जाता है, एक तो वो फौरन तौबा कर लेता है, और तौबा करने के बाद वो आइंदा के लिए और मोहतात हो जाता है। तो गुनाह, तो ईमान वाले की ये कैफियत होती है ना कि वो रोशनी में चल रहा होता है और कभी गुनाह हो जाए तो वो उससे तौबा करता है और मोहतात हो जाता है उसके बाद, ठीक है? लेकिन कोई शख्स जो है वो यानी तौबा ही नहीं कर रहा, और मुस्तकिल जो है वो फंसा हुआ ही है, यानी हर वक्त जो है वो अटक गिरा ही चला जा रहा है, हत्ता के उठ भी नहीं रहा। तो फिर ऐसे शख्स के पास तो मतलब ये हुआ ना कि भाई उसके पास तो रोशनी वोशनी कोई नहीं है। तो फरमाए कि ऐसा शख्स, क्या ऐसा शख्स बदहाली में उस शख्स की तरह हो सकता है कि जिसकी हालत ये हो कि वो गुमराही की तारीकियों में घिरा हुआ है, फिजुलुमात यानी गुमराही के अंधेरों के अंदर है वो, और उनसे निकलने ही नहीं पाता, लैसा बिखारिज मिन्हा। मुराद ये कि वो मुसलमान नहीं हुआ है, यानी ऐसा शख्स जो है ना फिर वो वही हो सकता है कि वो अभी मुसलमान हुआ ही नहीं है। और इसका ताज्जुब ना किया जाए कि कुफर पर बावजूद इसके जुल्मत होने के वो क्यों कायम रहा, ये तो अगली वाली बात है, अगले आयत से मुताल्लिक। तो अब ये जो मसला है ना कि जी जो ऐसी कैफियत है अगर इंसानों की, तो उसका मतलब ये है कि ईमान या तो बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि या तो बहुत ही तकल्लुफ पे बोला जाता है। लेकिन अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट के बारे में अवेयर हो, अगर हम अपने अहवाल के बारे में सही मानों में अवेयर हो ना, जरा कॉन्शियस हो, तो हम इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि जिस दौर और जिस जमाने में हम हैं और जो हमारे अहवाल चल रहे हैं, तो इसमें कोई बात, कोई ये बहुत मुश्किल बात नहीं समझ लगती समझना कि हम बगैर ईमान के जिंदा हैं, हम बगैर ईमान के जिंदा हैं। ठीक है, हमारा सिर्फ नाम मुसलमान है, हम कागज पे मुसलमान हैं, हम रिवायात के हिसाब से अपने आप को मुसलमान समझते हैं, या हम किसी जगह पे रहते हैं तो इस वजह से हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं, लेकिन हकीकत में हमारा ईमान नहीं है। और उसकी क्या वजह है, क्या कॉन्टेक्स्ट है वो, जिसको देख करके ये बात समझ में आती है। ये कॉन्टेक्स्ट है इस जहनी गुलामी का कॉन्सेप्ट, कि जिस हम काफिरों की जिस तरह की गुलामी की कैफियत के अंदर पिछले 150 साल से रह रहे हैं, और उन्हीं के बनाए हुए निजाम के अंदर से हम तालीम हासिल करके बड़े हुए हैं, बचपन में उनके स्कूलों कॉलेजों के अंदर तालीम हासिल की, उससे जब बाहर निकलते हैं तो फिर उनका मीडिया वो हमारी तालीम का इंतजाम संभाला हुआ है। ये मीडिया जो होता है ये गोया कि तालीम बालिगा ही है, तालीम बालिगा होती है ना, जो बचपन में जिसको तालीम अगर थोड़ी बहुत कम हो गई हो या ना मिली हो, तो उसको फिर वो तालीम बालिगा की क्लासेस में बिठाया जाता है। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज, ये कुफर का मीडिया जो है ये तालीम बालिगा का काम कर रहा होता है, और स्कूल कॉलेज जो है ये तालीम का काम, यानी बच्चे का काम कर रहे होते हैं। तो उनके स्कूलों कॉलेजों के अंदर, उनके निसाब के अंदर और उनके बनाए हुए असातिज़ा से जब हम तालीम हासिल करते हैं, तो हम अल्लाह ताला के इस ऐलान के मिसदाक बन रहे होते हैं, वह इन अतातुमुहुम इन्नकुम मुशरिकून, इन्नकुम लमुशरिकून। तो हम तो उनकी अताअत कर रहे होते हैं ना, वर्ल्ड व्यू के मामले में हम उनकी अताअत कर रहे होते हैं, कामयाबी के मामले में कि भाई क्या चीज कामयाबी है और क्या चीज नाकामी है, हम उनकी अताअत कर रहे होते हैं। तो फिर ईमान कहां से बाकी बचेगा, फिर रिवायात ही रिवायात है बस। देखा था अपने अम्मा अब्बा को काम करते हुए, हम उसी तरीके से कर रहे हैं। देखा था अपने माहौल मुआशरे को कुछ काम किसी तरीके से करते हुए, हम उसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन दिल में तो ईमान है ही नहीं, दिल में तो ईमान है ही नहीं, बल्कि शिर्क है, राइट? तो जब इस शिर्क की हालत में जो लोग परवरिश पाएंगे और फिर अपने माहौल मुआशरे का इंतजाम भी फिर वही लोग चलाएंगे, तो फिर उनका मामला क्या होगा, यही होगा ना, फिर जुलुमात लैसा बिखारिज मिन्हा, वो तो अंधेरों में होंगे जिसमें से वो निकल ही नहीं पा सकते। तो हम ऐसे लोगों से हम क्या तवक्को करते हैं कि वो ईमानी माहौल बनाएंगे, कि वो जो है वो दीन की हिफाजत करेंगे, वो दीन की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, वो दुनिया में किसी जगह अगर मुसलमानों के ऊपर कोई आफत आई भी होगी, मुसीबत आई भी होगी, तो वहां पे जाकर के वो उनकी मदद करेंगे। क्यों करेंगे भाई, वो खुद मुसलमान होंगे तो वो मुसलमानों की मदद करेंगे, वो मुसलमान ही नहीं है भाई, खामखा को उनको जो है वो मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान हुक्मरान, और वो हुक्मरान कोई अलग नस्ल नहीं है कि वो मार्स से आई है, वो हमारे ही लोग हैं ना, वो हम ही लोग हैं ना, जिसमें से किसी को मौका मिल जाता है तो वो हुक्मरान बन जाता है। ये तो नहीं है कि वो हमारे हुक्मरान जो हैं वो खलाई मखलूक होते हैं, वो हत्ता कि खलाई मखलूक में नहीं, वो कुछ किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हुए लोग तो नहीं होते हैं, गोरी चमड़ी वाले तो नहीं होते हैं, चाइनीज तो नहीं होते हैं, वो वही इंडियन पाकिस्तानी अरब लोग होते हैं, तो हुक्मरान बन जाते हैं, तो वो वही उसी जगह पैदा हुए हुए होते हैं ना। तो हुक्मरान तबका ये दरअसल आवाम तबके की एक छोटे से एक सेट होता है, छोटा सेट होता है उसका बस, ठीक है। तो सिर्फ हुक्मरानों का मसला नहीं है, अवाम का मसला है ना, कि अवाम मुशरिक हो चुकी है, अवाम काफिर हो चुकी है, और वो समझ रही है, इस गुमान में है कि वो बहुत अच्छी मुसलमान, तो इस गुमान से बाहर निकलेंगे तभी जो है वो तौबा की तौफीक मिलेगी ना। जब तक इस गुमान के अंदर रहेंगे तो तौबा कैसे करेंगे, किस चीज से तौबा करेंगे? तौबा तो गुनाह से की जाती है। जो इंसान अपने आप को गुनाहगार ना समझता हो वो कैसे तौबा करेगा, वो क्यों तौबा करेगा? तो ये हमारा मामला है। और फिर उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी ना, कज़ालिका ज़ुय्यना लिल काफिरीना, अपने गिरेबान में झांक करके देखें, हम अपने अमाल को मुज़य्यन समझ के नहीं देख रहे होते, अपने हालात को बहुत अच्छा नहीं समझ रहे होते, आसमान पे उड़ रहे होते हैं हर वक्त, अपने मुंह अपनी तारीफें करते हुए थकते नहीं है हम। कज़ालिका ज़ुय्यना लिल काफिरीना मा कानू यअमलून, जो वो अमल करते हैं ना वो उनके लिए मुज़य्यन बना दिए जाते हैं। ईमान वाले का हाल ये होता है कि वो अपनी नेकियों को भी गुनाह समझ रहा होता है, वो नेकियों को भी गुनाह समझ रहा होता है, ठीक है, और बिल्कुल अपने आप को वो किसी काबिल नहीं समझ रहा होता है। ये ईमान वाले का हाल होता है। और काफिर का हाल ये होता है गुनाहों को भी जो है वो नेकियां समझ रहा होता है। वो फरमाया कि इसका ताज्जुब ना किया जाए कि कुफर पर बावजूद उसके जुल्मत होने के वो क्यों कायम रहा। जुल्मत थी तो उसको तो निकल आना चाहिए था ना, कोशिश करनी चाहिए थी, निकल निकले उससे, फिर वो क्यों कायम रहता है कुफर के अंदर? उसकी वजह यह है कि जिस तरह मोमिनीन को उनका ईमान अच्छा मालूम होता है, ठीक है, ईमान अच्छा यानी नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद, नबी पर एतमाद, आमाल नहीं बल्कि नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद उनको अच्छा मालूम होता है, ठीक है। इसी तरह काफिरों को उनके आमाल कुफर वगैरह मुस्तहसन मालूम हुआ करते हैं। चुनाचे इसी वजह से ये रुसाए मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहमिल फरमाइशें और शुबहात मुजादलात पेश करते रहते हैं, अपने कुफर को मुस्तहसन ही समझकर उस पर मुसर है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हदीस याद आती है सबको कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करे तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो उसकी तदबीक जो है वो इससे कैसे करेंगे, जब तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करे तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो हाउ विल यू रिकनसाइल दैट विद दिस कॉन्सेप्ट के ईमान वाले को तो अपनी नेकियां भी गुनाह लगती हैं, तो फिर उस हदीस का क्या मतलब है? फिर यहां इन्होंने कुछ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं कि आप सही कह रहे हैं कि हमारे अंदर से ईमान बिल्कुल खत्म हो चुका है। अल्लाह आपके दिल में जो फिक्र डाली, अल्लाह हमारे दिल में भी ईमान की अहमियत और फिक्र डाल दे। अभी सारी बात हम अपने आप में और पड़ोसी रिश्तेदार सब में देखते हैं, देख रहे ना, हमारी बात की क्या बात है। कुरान मजीद को देखें, एक एक आयत को देखें और अपने गिरेबान में झांक करके देखें, कौन सी वाली आयत के हम जो है वो इस बात कर रहे होते हैं, नफी कर रहे होते हैं हम कुरान मजीद की आयत की, ठीक है। वो तो दरस कुरान जरा तवज्जो से पढ़े तो समझ में आता है ना कि फिर हम कौन सी ईमान वाले हैं, कैसे ईमान वाले हैं। बहरहाल, तो इसमें कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सादा सी बात है। कुरान मजीद जो है ना वो अल्लाह ताला ने तदब्बुर की, उसके अंदर हमें अल्लाह ताला ने यानी खाली दावत नहीं दी है कि खाने की दावत दिया और मजे मजे के खाने खा लो, नहीं, बल्कि ये हमारे लिए फर्ज वाजिब कुरान मजीद के अंदर तदब्बुर करना। अब उसके अंदर हदूद बेशक है, उसूल हदीस, उसूल कुरान, उसूल तफसीर के हदूद हैं, तो उन हदूद के अंदर, और फिर बड़ों से ताल्लुक के साथ तफसीर पढ़नी है अपने तौर पे, कोई थोड़ी अपनी अकल से जो है वो अपनी जहालत के साथ जो है वो मानी निकालने शुरू कर दिए कुरान की, ये मतलब नहीं है तदब्बर फिर कुरान का। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि नहीं जी बस पढ़ना ही नहीं है कुरान, हमने तो बस तदब्बर करना ही नहीं है, बस ये तो नाउज बिल्ला हराम है हमारे ऊपर ये काम करना। नहीं भाई, हर बंदे को इसकी इसकी अल्लाह ताला ने यानी भारा है इसके ऊपर ना, अफला या तदब्बरून कुरान, एक जगह नहीं बल्कि दो जगह पे आया आए थे ये। तो ये क्या है कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा, न तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करे तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है, और दूसरी तरफ जो है वो जो मजबूत तरीन निस्बत वाले मशाइख हैं उनकी तालीमात क्या है कि यानी जिन्होंने कुरान को समझा, जिन्होंने हदीस को समझा, राइट, और जिन्होंने उम्मत के अंदर इस्लाह का काम किया, वो फरमाते हैं नेकी भी गुनाह लगे तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस का मतलब क्या हुआ? अल अशियाओ तो अरफु भी अज़दादिहा, अशिया जो है ना वो अपनी जिद से समझ में आती है, खुसूसन ये जो कॉन्सेप्चुअल बातें होती है ना, एब्स्ट्रैक्ट बातें जो होती हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें जो होती है ना, वो अपनी जिद से समझ में आती है, यानी बिल्कुल जो असल है उसको देख करके वो बात समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसके ऑपोजिट को ना देखें। तो ऑपोजिट क्या है इसकी कि तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करे, इसका ऑपोजिट क्या बनता है, इसकी जिद क्या बनती है, क्या बनती है भाई? तुम्हारी नेकी तुम्हें खुश करे, इसकी जिद क्या बनती है, ऑपोजिट क्या बनता है इसका, मुतजाद क्या बनता है इसका, तुम्हारा गुनाह तुम्हें उदास करे। नहीं भाई, गुना परेशान करे नहीं, अक्स जो है ना वो एक अलग चीज होती है और ऑपोजिट एक अलग चीज होती है। आप लोगों ने जितने तीन जवाब दिए ना ये सब अक्स कहलाएंगे, ठीक है? हाँ, तुम्हारी नेकी तुम्हें गमगीन करे, तुम्हारी नेकी तुम्हें गमगीन करे, इसका इसका मुतजाद ये बनता है, ठीक है, कि तुम नेकी कर रहे हो लेकिन नाखुश हो इस बारे में कि तुम नेकी कर रहे हो, तुम खुश नहीं हो नेकी करने के ऊपर, बल्कि तुम्हारी नेकी तुम्हें यानी क्यों करी मैंने नेकी, क्या मुसीबत है कि मुझे नेकी करनी पड़ रही है, यानी नमाज पढ़ रहे हो ना नेकी कर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नेकी कहोगे इसको, नहीं, यू विल नॉट कॉल इट नेकी, ठीक है, क्योंकि नेकी के लफ्ज से तो फिर वो मुसीबत हो जाएगी ना कि यार ये क्या बात हुई कि नेकी को मुसीबत भी कह रहे हो, तो इस वजह से नमाज, ठीक है, अम्मा ने कहा नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ रही है लेकिन दिल में क्या है, क्या मुसीबत है यार मेरे पीछे पड़ी रहती है, राइट, क्या मुसीबत है यार मुझे नमाज पढ़नी पड़ती है, ठीक है, पर्दा करने को अब्बा कह रहे हैं पर्दा करने को, और बेटी जो है वो कह रही है क्या मुसीबत है मेरे ऊपर पाबंदियां लगाई इन्होंने, राइट, अल्लाह ताला कह रहे हैं ना करना फी बुयूत को ना, क्या मुसीबत है यार ये हमें जो है वो चिल करने नहीं देते, हमें बाहर जाने नहीं देते, हमें जो है वो जो कॉफी शॉप पे बैठ करके हमें ये करने नहीं देते, वो करने नहीं देते, ठीक है, तो अल्लाह का हुक्म है लेकिन उसके ऊपर दिल के अंदर बेइत्मीनानी है, यानी नाराजगी है और एतराज है, और उसके ऊपर जो है वो इस किस्म की कैफियत है, ठीक है, तो ये कैफियत ना हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर ईमान है, ठीक है, तुम्हारे अंदर ईमान है, यानी तुम एतमाद कर रहे हो कि नबी अलैहिस्सलाम की बात सही है, फायदेमंद है, इसको कहते हैं ईमान। ऐसा सोच कर नेकी करने पे अजर नहीं मिलेगी, तो जाहिर सी बात है आप उसका इनकार कर रहे हैं, ठीक है, आप उसका इनकार कर रहे हैं, इनकार करने के ऊपर कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई अजर नहीं मिलेगा, ये दोनों बात हो हमारे अंदर तो इसका क्या मतलब है, यानी पर्दे को मुसीबत भी समझ रही हैं और पर्दा कर भी रही हैं, इसका मतलब यह है कि ईमान नहीं है, ठीक है, तौबा कर लें, ठीक, बहुत आसान सा मसला है, खैर जो भी है दोनों बातों से, लेकिन नेकी खुश करने का मतलब यह नहीं है कि फूला समा, या क्या कहते हैं उसको, फूले नहीं समा रहे अपनी नेकी के ऊपर, ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है, कि जिसको कहते हैं ना नफ्स मोटा हो रहा है, नेकी करके नफ्स मोटा हो रहा है, नहीं ये तो नहीं, ये तो नहीं करना। ठीक है, तो बेहतर तो यही है कि अल्लाह आपका एहसान कि आपने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा दी, वरना मुझसे मुमकिन नहीं था ये नेकी करना। क्या क्या इसमें पैसे लगते हैं इसके अंदर, कि अल्लाह से बात करने में क्या पैसे लगते हैं? इसके लिए क्या आपको कोई वर्जिश करनी पड़ेगी, कोई आपको डाइटिंग करनी पड़ेगी, कोई आपको रोजे रखने पड़ेंगे, कोई आपको जो है वो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? अल्लाह ताला के साथ दिल के अंदर है, अल्लाह आपका एहसान है, आपने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमा दी, वरना तो मैंने नहीं करना था ये काम, वरना तो मुझसे नहीं हो सकता था ये काम। नहीं, इसको आप उल्टा समझे ना, ये तो मसला ऐसा रखता हूँ, जिन्होंने कुरान और हदीस को समझा है ना, उनको अपना बड़ा माने, अपने आप को बड़ा ना माने। ठीक है, इल्म हासिल करने के लिए ना जो जो मुअल्लिम होता है ना, उसको मुअल्लिम की जगह पे रखना होता है, अपने आप को मुअल्लिम की जगह से उतारना होता है। जो अपने आप को मुअल्लिम की जगह पे रखता है ना, वो कभी भी इल्म नहीं हासिल कर सकता। ठीक है, तो बड़ों की बातें पढ़ें और बड़ों की बातों को माने, तब इल्म हासिल हो, वरना हमेशा ही जाहिल की जाहिल रहेगी और कुछ नहीं हासिल होगी। एक नेकी के बाद दूसरी नेकी करने की तौफीक होना अल्लाह का, अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत होती है, अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं तो फिर, वरना कोई जरूरी नहीं है, वरना कोई जरूरी नहीं। एक नेकी के बाद अगर दूसरी नेकी की तौफीक मिल गई ना, तो जरूरी नहीं है कि कबूलियत की निशानी हो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगी, ठीक है, और शुक्र अदा करने का मतलब क्या होता है, ये तो हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, शुक्र अदा करने का क्या मतलब होता है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्या मतलब है इसका? शुक्र अदा करने का मतलब क्या है? अल्लाह के नियमतों का सही इस्तेमाल, नियमत का सही इस्तेमाल, नियमत का सही इस्तेमाल। नहीं, बल्कि यहां पर इसका मतलब भाई, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, अल्लाह ताला की नेमत का सही इस्तेमाल, ये शुक्र अदा करना है, ये पिछले बयान की रोशनी में बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, लेकिन इस वक्त जो बयान हो रहा है उसकी रोशनी में आपने सही जवाब नहीं दिया। तो इस वक्त जो बयान हो रहा है उसकी रोशनी में सही जवाब यह था कि अल्लाह का एहसान है, वरना मैंने काम, वरना मैं इस काबिल नहीं था। ठीक है, यानी मैं खुद से नहीं कर सकता था, यानी कि ठीक है, और इसकी मिसाली आज कई दफा आप लोगों को पानी के गिलास से दे चुका है। ठीक है, कि किसी ने आपको पानी का गिलास पिलाया ना, तो आप उसका दिल से शुक्रिया जब अदा करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मुझे पानी का गिलास नहीं पिलाती तो मैं खुद से तो नहीं पी सकता था, यह होता है दिल से शुक्रिया अदा करना। लेकिन अगर आप ये दिल में सोच रहे हैं, अगर ये ना मुझे पानी का गिलास पिलाती तो मैं खुद ही पी लेती, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये शुक्रिया नहीं है। ये जुबान से तो आप शुक्रिया कर रही हैं उसका, थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्लास ऑफ वाटर, राइट, बट ये दिल से शुक्रिया अदा नहीं कर रही। दिल से तो उस वक्त शुक्रिया अदा होता है जब आप ये समझ रहे हो कि आई डिड नॉट डिजर्व दिस, एग्जैक्टली, ठीक है, ये तो मुझ पर एहसान हुआ है कि मुझे ये चीज मिल गई है, वरना मैं तो खुद नहीं कर सकती थी ये वाला काम। ठीक है, तो एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक मिलना, इस पर शुक्र अदा कर रही होंगी ना, यानी ये समझ रही होंगी कि मेरे बस में नहीं था कि मैं दूसरी नेकी करती, ये खालिसतन अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है, तौफीक दी है, रिसोर्सेज दी हैं, वक्त दिया है, सेहत दी है, राइट, सोच दी है, इस वजह से ये नेकी कर दी है, वरना मेरे बस में नहीं था, तो ये शुक्र अदा करना होगा। ठीक है ना, ये शुक्र अदा करने वाली जो कैफियत है ना, ये कबूलियत की दलील है, ये कबूलियत की दलील है, वरना सिर्फ कर लेना ये कबूलियत की दलील है। ठीक है ना, अच्छा, तो ये तो हो गए फलासे तफसीर, फिर मारुफ मसाइल इंशाल्लाह अभी क्लास के अंदर पढ़ना शुरू करेंगे, क्लास खत्म करते हैं। वाह, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलाम। बिल्कुल।